ये आकाशवाणी है, अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय में कल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर दूसरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों सहित मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। इस दौरान बोहरा समुदाय के सदस्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे वर्षों की मेहनत के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लाने का प्रमुख कारण यह था कि प्रचलित प्रणाली अधिकतर महिलाएं और विशेष रूप से विधवाओं को पीड़ित कर रहा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि न्यायालय देश के राष्ट्रपति को निर्देश दे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान की व्याख्या कर सकता है। श्री धनखड़ ने कल नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति आवास में राज्यसभा प्रशिक्षुओं के 6ठे बैच को संबोधित करते हुए यह बात कही। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी प्रणाली के क्रियान्वयन से परिवर्तनकारी परिणाम आए हैं। भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से नीति पत्र का हवाला देते हुए श्री गोयल ने बताया कि पारदर्शी और तकनीक संचालित सुधारों के कारण भारत का कल्याण दक्षता सूचकांक WEI 2013 के 0.32 से बढ़कर 2023 में 0.91 हो गया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से भ्रष्टाचार कम हुआ है, योजनाओं के लाभार्थियों के दायरे का विस्तार हुआ और सब्सिडी आवंटन में कमी आई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने हिंसा की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से कराने की मांग याचिका को खारिज कर दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य की मांग याचिका पर न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र है और यदि आवश्यक हो तो स्वतंत्र रूप से NIA जांच का आदेश दे सकती है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कल जाति जनगणना कहे जाने वाली सामाजिक आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कानून मंत्री HK पाटिल ने कहा कि सदस्यों ने सर्वेक्षण और अन्य तकनीकी मुद्दों के बारे में अधिक जानकारी मांगी। 2 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रिपोर्ट पर आगे चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका और यूरोप के बीच संभावित व्यापार समझौते के बारे में आशा व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने पुष्टि की कि उन्होंने रक्षा खर्च, अप्रवास और टैरिफ पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सहयोगी देशों से आयात पर 20% टैरिफ लगाए जाने और फिर रोक दिए जाने के बाद इटली के प्रधानमंत्री वाशिंगटन का दौरा करने वाली पहली यूरोपीय नेता है। IPL क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। भारत के सौरभ कोठारी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स में पिछले विजेता पंकज आडवाणी को 725-480 अंक से हराकर खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ कोठारी IBSF WBL विश्व बिलियर्ड पेशेवर खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।